ओम शांति। आज का हमारा सत्र लेने के लिए हमारे बीच में बहन ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर रश्मि ओझा जी हैं। हम जोरदार कर्तव ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। आप विशेष रूप से मुंबई से हमारे बीच में आए हैं और आप जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में बचपन से ही आए हैं, तब से ही आप ज्ञान योग का आप अभ्यास कर रहे हैं। आपने मास्टर्स लॉ में करी है, देन पीएचडी ह्यूमन राइट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया में आपने पीएचडी इस पे करी है। आपका विशेष रूप से ह्यूमन राइट स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड चाइल्ड के लिए आपका विशेष योगदान रहा है। आप एज ए डीन भी आपने सर्व किया है। आपके गाइडेंस में बच्चों ने पीएचडी की डिग्री भी ली है। आपने टीचिंग के साथ साथ एज एन एडवोकेट और सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में 12 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सेवाएं दी हैं, प्रैक्टिस की है। आपके बहुत सारे पब्लिकेशंस नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन समय प्रति समय पब्लिश होते रहे हैं। आपने बहुत सारे पेपर्स लाइक फ्रांस स्वीडन चाइना इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर के प्रेजेंट किए हैं। बहुत सारे सेमिनार्स में आप एज अ चीफ स्पीकर के रूप में वहां पे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी समय प्रति समय सम्मानित किया गया है, जैसे शिक्षा रत्न पुरस्कार। वर्तमान समय आप चेयरपर्सन हैं एक एनजीओ के ह्यूमन राइट एक्शन ग्रुप। और हमें कल ही पता चला कि दीदी को रिसेंटली जस्ट 2 डेज बैक स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी जो कि एक मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है जो कि बहुत फेमस है, उसमें आप एज अ लीगल एक्सपर्ट के रूप में आपको एज एक्सटर्नल मेंबर के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। और लास्टली मैं कहना चाहूंगी, आध्यात्मिकता शब्दों में नहीं होती है, आध्यात्मिकता जीवन में होती है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल लाइफ की आप साकार उदाहरण है हमारे सामने। और आज का जो हमारा सत्र है वो है स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको लेने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि प्लांट्स और बैच के द्वारा दीदी का सम्मान करें। आप तालियां बजा सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर रश्मि ओझा जी, थैंक यू।
ओम शांति। द गॉड ऑफ सुप्रीम जस्टिस, परमपिता शिव परमात्मा, शिव बाबा, यहाँ मौजूद एस्टीम डिग्निट्रीज, जजेस, काउंसिल्स, एडवोकेट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज का विषय है स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस सत्र का विषय है और आज 14 सितंबर 2024 है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन तो अवश्य ही कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में अपने विचार आपके समक्ष रखूं। तो सिस्टर जो अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी, उन्होंने बहुत ही जनरस इंट्रोडक्शन दिया। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एज पर लॉ। आप सब तो लॉयर्स ही हो, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ लॉ, दैट्स द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन हमारे मन में यह बात आती है, व्हाट इज स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसा भी कोई शब्द है जिसको हम स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, हम कैसे इसका इंटरप्रिटेशन करके अपने रोज के जीवन में धारण कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैठे भाई से मैंने निवेदन किया था कि जब स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस की बात आती है तो योग के लिए यही गाना रखा जाए, सद्गुण। आपने सुना होगा, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। तो आप देख सकते हो कि चाहे कुछ भी क्वालिफिकेशंस कितने भी हो, लेकिन हमारे जो गुण हैं उस पर से हम आइडेंटिफाई होते हैं। एक चीज, एक जो पत्थर होता है, अगर वो सद्गुणों से भरा हो तो उसको हीरा कहलाया जाता है, और अगर अवगुण से भरा हो तो वो पत्थर में फेंक दिया जाता है। तो ये इस गीत के पीछे उसके जो शब्द है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत ही मूल्यवान है कि सद्गुण अवगुण के कारण ही कोई हीरा बन जाता है, कोई पत्थर कहलाता है। तो जब स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस की बात आती है तो कुछ एकाद उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी कि हम ये स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है। हमारी रोज की दिनचर्या में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम क्या है। आपने पिछले दो दिन से तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि यहाँ बाबा हमें रोज यही ज्ञान देते हैं। आप में से कई सारों ने मुरली भी सुनी होगी और बाबा कहते हैं कि हम स्वयं को देखें। तो ये स्वयं क्या है? ये स्वयं यह शरीर नहीं है। तो एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जंगल का राजा शेर होता है, और एक बार ऐसे हुआ कि शेर अपने जो छोटा सा शेर का बच्चा अभी अभी नया नया जन्म हुआ था, उसकी माँ के साथ जा रहा था, और जंगल में चलते चलते वह बच्चा खो गया कहीं और शेर कहीं दूसरी दिशा में चला गया। तो वो बच्चा खो के कई सारे बाकी के पशु प्राणियों से मिला, क्योंकि उसकी माँ खो गई थी, वो दूसरी दिशा में चली गई थी जंगल में। तो जिन जिन लोगों से उसका परिचय होता गया, चाहे हाथी हो, चाहे अलग अलग प्रकार के पक्षियां हो, चाहे बकरी हो, चाहे और भी प्राणी हो, गाय हो, जो भी हो, तो उन लोगों से मिलते मिलते वो उनके जो गुण थे वो एब्जॉर्ब करता गया। तो अपनी खुद की आइडेंटिटी, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी पान जैसा पानी वैसी अब हमारी वाणी होती है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो जिन जिन लोगों से मिला, वो खुद की छोटा बच्चा था शेर का, और उसको पता भी नहीं था कि शेर जंगल का राजा होता है, खुद की आइडेंटिटी भूल जाता है। और ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन निकल गए, कुछ महीने निकल गए, और एक बार ऐसा ही वो जंगल में चल रहा था कि एक बड़ा सा शेर आके उसके सामने खड़ा हो गया। तो वो छोटा सा शेर का बच्चा बहुत ही घबरा गया और उसने उस बड़े से शेर से कहा कि प्लीज आप मुझे मारना नहीं, मैं तो एक छोटा सा गाय का बच्चा हूँ। वो अपने आप को गाय, क्योंकि लास्ट में वो गाय से मिला था, तो मैं तो एक छोटा सा गाय का बच्चा हूँ, आप प्लीज मुझे मारना नहीं। तो वो शेर जो बड़ा सा था वो बिल्कुल चौंक गया, उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। वहां पानी का एक तालाब था, उसने कहा इसमें तुम झांक के देखो कि। तो वो बच्चे ने झांक के देखा, उसको लगा ये तो बिल्कुल शेर के जैसा ही मैं दिखता हूँ। तो उस बड़े से शेर ने कहा कि तुम अपने आप को ही भूल गए हो, असल में तुम जो हो वो तुम भूल गए हो। और वो शेर का बच्चा एकदम खुश हो गया और उसने कहा कि यू हैड फॉरगॉटन योर सेल्फ। तो वो जल्दी जल्दी से खुश होके वहां से निकला, उसको लगा ये अब शेर तो मुझे मारेगा नहीं और वो जो शेरों की बिरादरी थी उसमें वो जाके खुश होते होते चला गया। तो हमारी लाइफ की जर्नी में भी हम कितने सारे क्लाइंट्स को मिलते हैं, कितने प्रकार के लोगों को मिलते हैं, कितने कितने लोगों से हमारा इंट्रैक्शन होता है, किसी से अच्छी बातें होती है, तो हम अपने आप की स्वयं की आइडेंटिटी काफी बार भूल जाते हैं। तो यह एक सोचने की बात है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस, इट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी जो हमें यह लगातार याद दिलाती है कि हम क्या है। आपको पता होगा कि हम काफी बार जिन जिन लोगों को मिलते हैं उनके कुछ लक्षण, जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है कि अभी इन दिस युग, यही युग में फिल्म स्टार्स की, क्रिकेटर्स की, लोग कितनी कितनी कॉपी करते हैं और वो अपने आप को भूल जाते। जैसे कुछ साल पहले साउथ में सुनामी हुआ था और एक ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि डेवलप नेशंस में भी नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप होता है, जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे सुनामी होता है, हैवी रेनफॉल होता है, फेमाइंस होता है, फ्लड्स होते हैं। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, इस युग में कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो एक ऐसी ही डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी में, ये एक सत्य घटना है, मैं नाम नहीं देना चाहूंगी, एक इंसान जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ही विद्वान था, बहुत ही पैसे थे, उनकी बहुत ही अच्छी सपोर्टिव फैमिली थी, उसका सब कुछ छीन गया इस ट्रेजेडी में। उसने अपना सब कुछ, सर्टिफिकेट, घर टूट गया, उसके घर के सारे मेंबर्स ने शरीर छोड़ दिया, सब कुछ उसका, पैसे बिल्कुल नहीं रहे, सब कुछ उसका छूट गया। लेकिन उसके मन से खुशी, उसके मन की जो मानसिक शांत व्यवस्था थी वो उससे नहीं छूटी। तो कई लोग जो उससे मिलते थे वो सोचने लगे कि इतना सब कुछ उसका चला गया फिर भी ये इतने शांत और खुश क्यों है। तो उनसे पूछा गया है कि आपका सब कुछ छीन गया तो भी आप इतने खुश और शांत क्यों हैं? तो उसने कहा कि ये बात सही है कि मेरा सब कुछ छूट गया, बट आई हैव फाउंड समथिंग विच इज एक्सिलरेटिंग एंड अपलिफ्टिंग, दैट इज आई हैव फाउंड माई सेल्फ। मैं अपने आप को तब ढूंढ पाया जब मुझसे सब कुछ छूट गया। लेकिन हम में से कई सारे जो यहाँ मौजूद है, हम में से सभी लोग कुछ ना कुछ चीजों से अटैच्ड है और इसलिए शायद हम सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने आप की खोज करने में। कल आपने पुष्पा दीदी का प्रवचन सुना, आपने सूरज भाई जी का प्रवचन सुना कि हमें अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन, वैसे मैं साइंस की स्टूडेंट थी पहले, तो हमें डाइसेक्शन होता था, वो डाइसेक्शन बॉक्स होता है, डाइसेक्शन करके हम एक्सपेरिमेंट करते थे। तो हम अपने आप में क्या डाइसेक्शन करके इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमारी असलियत क्या है? जब तक हम अपने आप की खोज नहीं करेंगे, हम यह जान नहीं पाएंगे कि हमारी असलियत क्या है, वेदर इट इज दिस मॉर्टल बॉडी विच इज गोइंग टू बी मॉर्टल। एट द मोस्ट आप 125-150 साल जी सकते, उससे तो ज्यादा शायद ही आप नहीं जी पाएंगे, बट इट इज द सोल विच इज इमॉर्टल, जो हमेशा लगातार कभी मरता नहीं है और वो अपने गुण लेके, जैसे कल पुष्पा दीदी ने बताया, मन बुद्धि और संस्कार लेके वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और फिर ऐसे लगातार हम 84 बर्थ्स लेते हैं। बाबा कहते 5000 साल की जो चक्र है उसमें घूमते रहते हैं हमारे कर्म के हिसाब से। जैसे कल कर्म का एग्जाम्पल दिया था तो उस हिसाब से। लेकिन क्या है कि क्योंकि हम स्वयं की आइडेंटिटी भूल गए हैं, तो हम जो जो लोगों से मिलते हैं हम उनकी किसी न किसी तरह कॉपी करते हैं, उसके किसी न किसी तरह उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते न चाहते हुए भी, क्योंकि संग वैसा रंग होता ही है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत। तो मुझे याद है मैंने एक इंग्लिश मैगजीन में पढ़ा था कि कई साल पहले यूएस में काफी सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हुई थी, कुछ साल पहले अराउंड 9,47,000 मेल्स ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी और अराउंड 1,00,000 विमेन, 1,00,000 से थोड़ा सा ही कम होगा, 99,000 एंड ऑड विमेन ने कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई थी। मेरे जब प्रैक्टिस करती थी कुछ सेलिब्रिटीज भी क्लाइंट थे, तो वो कुछ फेस अपलिफ्टिंग या जब बूढ़े से होने लगते हैं तो वो अपलिफ्टिंग एंड फेशियल मसाज एंड वो क्या क्या होता है तो वो कॉपी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक बिजनेस हो गया है, शायद इंडिया में भी ये हम देखते हैं कि ये एक बिजनेस सा हो गया है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अराउंड $234 बिलियन ने बिजनेस बनाया ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं जहां रहती हूं वहां मेरी खुद की ही बिल्डिंग में ओरिफ्लेम का कोई बिजनेस एक मैडम चला रही है और ओरिफ्लेम के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, और या तो फिर लैक्मे ये वो। तो हम देखते हैं कि वी ट्राई टू बी लाइक समबडी एल्स। बाबा कहते हैं कि हम बी योर सेल्फ, ट्राई टू नो योर रियल सेल्फ, वही सबसे अच्छी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। हमारी असलियत को जानो टिल व्हेन वी विल बी अलाइव, और हमारी असलियत क्या है। इट्स नॉट दिस डॉक्टर रश्मि ओझा जो कि एक प्रोफेसर है मुंबई यूनिवर्सिटी में, ये सब आइडेंटिटी कायम रहने वाली नहीं है। तो जो कायम रहने वाली चीज है जो कभी मर नहीं सकती है वो आत्मिक ज्ञान है जो बाबा हमें रोज रोज मुरली में सुनाते हैं। क्योंकि ये लीगल जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस है तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बहुत ही सक्सेसफुल जज से पूछा गया, एक रिपोर्टर आए अपॉइंटमेंट लेके और उन्होंने उनसे पूछा, सर आई हैव जस्ट 3 questions फॉर यू, 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, आपको सभी लोग कहते हैं यू आर अ सक्सेसफुल जज। तो उसने कहा कि गुड डिसीशन, मेरे जजमेंट्स काफी फेमस है तो मैं उसी से मेरा सक्सेस नापा जा सकता है। तो रिपोर्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा, सर आपके अच्छे जजमेंट्स या डिसीशन के पीछे का राज क्या है। तो उसने कहा एक्सपीरियंस, पहले मैं लॉयर था, फिर काउंसिल बना, फिर मैं जज बना हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरे पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। तो रिपोर्टर एग्जास्परेटेड एंड ही सेड, सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपके एक्सपीरियंस के पीछे का राज क्या है। तो तुरंत ही वो जज जो कॉन्शियस थे उन्होंने कहा बैड डिसीशन, क्योंकि मेरी लाइफ टाइम में मैंने कई बार ऐसे गलत डिसीशंस भी लिए हैं जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस बना, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं कई सारी केसेस में अच्छे जजमेंट्स दे पाया हूँ। पिछली कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में कुछ ऐसे जजेस के नाम आप कुछ लोग तो जानते ही होंगे, हमारे जो जूरिस्ट विंग के सबसे फर्स्ट पेट्रन मेंबर है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर सर की, जो आप कई सारी किताबें, वो एट द एज ऑफ 100 उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उसने लास्ट बुक ऑथर की थी एट द एज ऑफ 98 और उस बुक का टाइटल था 98 नॉट आउट। तो उनका जो जजमेंट, और आपको पता ही है कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट मैं भी नहीं पढ़ पाती, मुझे भी एक डिक्शनरी की आवश्यकता होती है, उनका इंग्लिश उतना हाई लेवल का होता है, तो उनके जो सारे जजमेंट्स है उसमें इतना कॉम्पैशन, उसमें उतना काइंडनेस, उसमें उसके खुद के कितने सारे विचार इम्बाइब्ड होते हैं, ना कि द फोर कन्फाइंस ऑफ ये लॉ है, ये लॉ है, ये उन्होंने अपने विचार देके उस उन जजमेंट्स को जस्टिफाई किया है। तो जब स्पिरिचुअल प्रूडेंस, मैं जूरिस प्रूडेंस के अलावा प्रूडेंस कहूं, तो प्रूडेंट, द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट इज अ रीजनेबल एंड अ प्रूडेंट मैन, कि जिसकी सोच रीजनेबल है, जो प्रूडेंट है, उस हालात में हम उनको रखे तो एक अच्छा सा इंसान क्या करेगा, क्या सोचेगा और क्या करेगा, उसको प्रूडेंस कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे जजेस थे तब के जमाने में, स्पेशली ड्यूरिंग दी लेट 70s, जिन्होंने ऐसे जजमेंट्स दिए, तो उनका एग्जाम्पल आज भी लिया जाता है, उनकी मेमोरी में आज भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी याद आज भी आती है। और जब प्रूडेंस की बात आती है, और जब मैंने अपने आप को आपके सामने यह अपने विचार रखे, तो मुझे वैसे भगवत गीता के कोई श्लोक याद नहीं है, संस्कृत के श्लोक, भगवत गीता में वो जो ट्रांसलेशन होता है वो काफी सारा समझ पाती हूँ, लेकिन जो एक श्लोक मुझे अच्छे से याद रह गया है वो भगवत गीता का चैप्टर 2 टेक्स्ट 28 का, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वम शोचितम् अर्हसि। मीनिंग, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित इज नो चेंज, इट्स बाउंड टू बी, और मृत्यु के बाद फिर से जीवन निश्चित है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देयरफॉर इन दिस अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज यू शुड नॉट लेमेंट, हमें जो ड्यूटीज करनी है, हमें जो यू शुड नॉट लेमेंट, और इसीलिए समय हमारी जिंदगी में काफी महत्व का रोल प्ले करता है। समय के बारे में कहा गया है कि कल जो हो गया दैट इज हिस्ट्री, आने वाला कल में जो होगा दैट इज मिस्ट्री, वी डोंट नो कल क्या होगा, कल आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल मेरा क्या होगा मुझे भी पता नहीं, इट इज टुडे विच इज अ गिफ्ट, इसको गिफ्ट कहते हैं वर्तमान समय में, एंड दैट इज एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज प्रेजेंट, गिफ्ट को प्रेजेंट भी कहते हैं, सो टुडे इज समथिंग विच इज अ गिफ्ट। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या, जैसे कल सूरज भाई जी ने कहा कि लेट सोना लेट उठना, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही ऐसा है, हम भूल जाते हैं 18 घंटा काम करते हैं, स्वयं पे ध्यान देना, स्वयं की सोच पे, स्वयं की मोरालिटी, स्वयं की वैल्यूज पे ध्यान देना, हम काफी समय, बहुत से सारे समय हम भूल ही जाते हैं, और हम इतने व्यस्त रहते हैं, और आखिर में जब पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। तो ऐसा ही एक घटना बनी थी, एक राजा के पास बहुत ही धन था, और वह राजा एक बार, उसने किसी सन्यासी का नाम सुना तो उसने अपने सन्यासी को अपने महल में बुलाया और उसने कहा, कुछ ज्ञान की बातें सुना दीजिए आप हमें, उनका खूब अच्छा स्वागत सत्कार किया, ज्ञान की बातें सुना दीजिए। तो वो सेज, जिसको बोलते हैं सेंट, उसने कहा कि ठीक है राजा, मैं आपको दो प्रश्न करूंगा, मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वो साधु ने कहा कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप बहुत घने जंगल में हो, और कई दिनों से आपको ना कुछ खाने को मिला, ना कुछ पानी पीने को मिला, और आप भटक गए हो, और आपको बहुत ही जोरों की प्यास लगी है, आपको भूख भी बहुत लगी है। तो
Yeah।
सेशन थी, तो वो साधु ने कहा कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आप घने जंगल में हो और भटक रहे हो, आप रास्ता भूल गए हो और कई दिनों तक आपने कुछ खाया नहीं है, पानी भी आपको पीने को नहीं मिला, और आप समझो कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति पानी का सिर्फ आधा सा ग्लास लेकर आ जाए और कहे कि आपको पानी चाहिए, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे आपका आधा राजपाट दे देना होगा, तो आप क्या करोगे? तो राजा ने कहा, मैं बिल्कुल सोचूंगा नहीं, मैं तुरंत हाँ कह दूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्यासा होऊंगा और मुझे पानी की अति आवश्यकता है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, अब आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई दूसरा आदमी आपके पास आ रहा है और वो एक रोटी उसके हाथ में है और वो आपको कह रहा है कि अगर आपको ये रोटी मुझसे चाहिए, अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो उसके बदले में आपको बाकी का जो आधा राजपाट है वो आपको मुझे दे देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? तो राजा हंस के कहने लगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं कई दिन से भूखा होऊंगा, तो मैं उसको हाँ कह दूंगा कि ठीक है, आप मेरा बाकी का भी राजपाट ले लो। तो साधु ने कहा कि देखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी मिलकर दौलत, नाम, वो जो प्रतिष्ठा है, सारे कमाने में लगा देते हैं, जबकि उसकी वैल्यू सिर्फ आधा ग्लास पानी और एक लोफ ऑफ ब्रेड के बराबर की होती है, लेकिन हम कितना भूल जाते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं, हालांकि उसकी कीमत कुछ नहीं होती है, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज होती है, तो क्यों ना हम अपने इस जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, हम उनका रियलाइज करें कि उसकी कीमत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। सो दैट इज वन एग्जाम्पल विच गिव्स अस द फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअल jurisprudence as such. Ishwar ne, it's said in English, God created man and woman, lo and behold, and the whole world started with ecstasies, thrills, pleasures and pains. And to rationalize between pleasures and pains, the rule of law emerged, which is the foundation of civilization and soul of democracy. तो ये जो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बातें हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल, जैसे कि कल जब इनॉग्यूरल सेशन था, तो कानून से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है, कानून हमें कोई शांति नहीं दे पाता है, उल्टा हमारी अशांति बढ़ जाती है जो जब हम लिटिगेशन कोर्ट्स में जाते हैं। तो देयरफॉर इट इज सेड दैट दिस रूल ऑफ लॉ विच इज ठीक है, आवश्यकता है, हमारे देश में कई सारे डिफेक्टिव कानून है, लेकिन फिर भी कानून की आवश्यकता है। एक चाइनीज जूरिस सुन जे ने कहा है कि हमारे इंसान की, मैन हु इज बाई इज वेरी नेचर विकेट, क्योंकि लोग सारे स्वार्थी होते, नीड्स टीचिंग एंड डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिफॉर्म्ड। The ancient rulers understood the viciousness of man and therefore created laws, morals and institutions so that human beings can be transformed and reformed. Lekin kya hota hai waise? Wo hua nahi hai. Laws, courts, institutions, usse hamara koi reformation nahi hua hai. Hum apni had tak hi uska istemal kar rahe hai aur fir ek din aata hai jab hum यह शरीर छोड़ देते हैं। तो वी आर फेलिंग टू रियलाइज दिस ट्रू रियलिटी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जो भी एक वह भी एक सत्य घटना हुई है। हमारे भारत देश में हम कानून को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, जैसे कि पर्यावरण हो, जैसे कि यू नो वी ब्रीच द लॉज मोर ऑफन देन कॉम्प्लाई। तो ऐसे ही एक इंडियन इंसान जब सिंगापुर गए थे, तो वो सिंगापुर वहाँ के कानून काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते उसने अपने मुंह में एक सिगार रखी थी, सिगरेट फूंक रहे थे। और फिर जैसे ही वो आधी हो गई उसने कांच खोल के वो सिगरेट गाड़ी के बाहर फेंक दी और वो आराम से मस्त में चले गए। तो जस्ट कुछ ही थोड़ी ही दूरी पे एक पुलिसमैन आया और उसके आगे खड़े हो गए और पुलिस ने कहा आपकी गाड़ी रोकिए। तो वह इंसान एकदम मुझसे कहा क्यों, मैंने क्या किया है? तो उसने कहा पुलिस ने कि देखिए मैंने देखा आपने चलती गाड़ी से आपकी सिगार बार फेंकी और हमारे यहाँ के कानून के मुताबिक आपको सो एन सो दंड होता है, पेनल्टी होती है। तो वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था, जैसे इंडिया में हमारे वो 100, 200, 500 देके हम छूट जाते वैसा नहीं, वहाँ बहुत ही बड़ा अमाउंट था। तो वो आदमी बिल्कुल घबरा गया जो कि इंडियन था। उसने पुलिसमैन से कहा मेरे पास तो उतने नहीं है पेनल्टी देने के, इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है जो जिससे मैं बच सकूं इतनी बड़ी पेनल्टी से? तो वो पुलिसमैन ने कहा हाँ एक रास्ता है, आप वहाँ सेम पीछे वहीं जाइए और आपने जो सिगरेट जली हुई नीचे फेंकी थी वो उठाकर बुझाकर आप मेरे हाथ में रख दीजिए तो मैं आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बाहर फेंका नहीं जाता। तो उसने सोचा अरे ये तो सबसे आसान चीज है, क्यों ना मैं वहाँ पीछे चला जाऊं और देख लूं जहाँ मैंने फेंकी थी। वह वहाँ गया, उसने इधर उधर देखा कहीं उसको सिगरेट नहीं मिली और उसको पुलिस की पेनल्टी से बचना भी था। तो उसने देखा कि साइड में ही एक वॉशरूम था, वो अंदर चला गया, उसने दूसरी सिगरेट जला ली और वो बुझा दी और वो बाहर आया और उसने पुलिसमैन से कहा कि ये देखिए मैं ढूंढ पाया यहाँ से नीचे से और ये लीजिए मैं आपके हाथ में रख रहा हूँ वो सिगरेट। तो पुलिसमैन ने उससे कहा कि नाउ यू विल हैव टू पे डबल द पेनल्टी, आपको और डबल पेनल्टी इसकी लगेगी। तो उसने कहा क्यों, आपने जो कहा था वो तो मैंने कर दिया। तो पुलिसमैन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, उसने कहा कि आपकी जली हुई सिगरेट लेके मैंने अपने पॉकेट में संभाल के रखी थी, एक तो आपने इस देश का कानून तोड़ा, कानून तोड़ने के बावजूद भी दूसरी बात आपने एविडेंस झूठ बोलकर क्रिएट किया, उसकी आपको डबल पेनल्टी अब भरनी पड़ेगी। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, नए नए कानून निकलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी ये जो डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी एक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब नया कानून, सरोगेसी, IVF, ये सारे जो नए नए कानून है। तो जब ये बात आती है कि क्या वह हमें रिफॉर्म हम में ला सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं ला सका, क्योंकि ये इंसान की जो सोच जब तक नहीं बदलती, झूठ बोलना, कानून को कैसे उल्टा पुल्टा करके। मैंने अभी एक हमारी लता बहन जी जो कोऑर्डिनेटर है उसने व्हाट्सएप पे एक अच्छा सा लेट मिस्टर राम जेठमलानी की इंटरव्यू भेजी थी और एक जर्नलिस्ट उनसे बहुत ही एग्रेसिवली बात कर रही थी कि आपने मनु शर्मा का केस लिया, आप ये नहीं समझते कि ये आपने गलत काम किया। उसने कहा ये मेरा प्रोफेशन है, और इतने वो भड़क गए और वो कहने लगे कि मेरे प्रोफेशन में प्रोफेशनल एथिक्स मुझे सिखाता है कि जो भी क्लाइंट मेरे पास आए वो मेरे क्लाइंट है, मेरा हक है ये केस लेने के लिए। तो ये कानून प्रोफेशनल एथिक्स सभी ने पढ़ी थी जो लॉ स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल एथिक्स है वो सिर्फ हमें बाबा और ऐसी संस्थाएं हमारे जैसे ब्रह्मा कुमारी की संस्थाएं वही पढ़ा सकते हैं कि व्हाट इज द रियल ओरिजिनलिटी ऑफ एथिक्स इन लाइफ। हम काफी बार झूठ बोल देते हैं और झूठ बोलने का परिणाम आपने देखा ही कि एक इंडियन को कैसे भुगतना पड़ा और उसको उस पर डबल पेनल्टी लग गई। तो ये जो है टुडे वी आर लिविंग इन एन ईरा विच इज द डार्केस्ट ईरा, जिसको हम कलयुग कहते हैं। बाबा हमें कहते हैं ये संगम युग है, और हम कई बार लोगों को सुनते हुए सुन लेते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। जो जो रोज आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, पूरा क्राइम्स की, पूरा ऑफेंसेस की, ये हुआ, उसने ऐसा किया, वो ही पूरा उसी से भरा हुआ न्यूज़पेपर रहता है। लेकिन जब ये बात आती है, इट इज ट्रू दैट वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट ईरा, वी डिक्राइ द इरोशन ऑफ सर्टन वैल्यूज विच ब्रिंग्स क्वालिटी टू लाइफ, और फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। टेनिसन, आपने टेनिसन का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने ठीक कई साल पहले एक छोटी सी पोएम बनाई थी, और उसने पोएम में यह कहा कि इंसान क्या है। उसने कहा कि वॉट एम आई, मैं क्या हूं। यानी एक छोटा सा बच्चा रोता है ना, जब उसकी जिद पूरी नहीं होती वो रोता ही रहता है। तो हमारी मानसिक हालत ये हो गई है कि हम कभी संतुष्ट ही नहीं होते। सो ही सेड इन हिज पोयम, बट वॉट एम आई, इट्स आई एम एन इन्फेंट क्राइंग एट नाइट, आई एम एन इन्फेंट क्राइंग इन द लाइट, एंड आई नो नो अदर लैंग्वेज बट टू क्राई। यानी कि हम बिल्कुल संतुष्ट ही नहीं होते धन कमाने में, पोजीशंस, क्वालिफिकेशंस, इसमें हमारी संतुष्टता ही नहीं होती है, और हमारी जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है। एंड दैट इज सो वेरी ट्रू। कल आपने सूरज भाई जी का वक्तव्य सुना, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छी अच्छी हमें सीख दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रेडिक्ट किया था कुछ साल पहले कि स्ट्रेस विल बी नंबर वन किलर बाय द ईयर 2020। आज टुडे वी आर इन द ईयर 2024। सारे दुख, सारे टेंशन, सारे डिजीजेस की वजह नंबर वन स्ट्रेस है। चाहे आप ब्लड प्रेशर का हो, डायबिटीज का हो, यू नो वॉट एवर, कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे कैंसर का हो, इसकी नंबर वन रूट कॉज जो है वो स्ट्रेस है। और मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, हम और आपने, वो जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद स्ट्रेस राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। और इसीलिए एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उनसे कहा जाता है आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो, ताकि आपका बच्चा गुण धारण करके पैदा हो। बट इट इज बिलीव्ड बाय द मेडिकल साइंटिस्ट दैट अ पर्सन इज बॉर्न विद स्ट्रेस राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। और आज हम यही समझ लेते हैं कि हम तो लॉयर है, हम तो ये करते हैं, हमारा तो बिजनेस है, तो स्ट्रेस तो, हम ह्यूमन बीइंग्स है तो स्ट्रेस तो होना ही है, बिना स्ट्रेस के जीवन तो होता ही नहीं है, जैसे कल सूरज भाई जी ने कहा। बट दैट इज नॉट ट्रू। स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज एनीथिंग विच इज नॉर्मल, हम यह कोशिश नहीं करते कि हम उनको फाइट बैक करें। आज यूनाइटेड स्टेट्स, कई सारे डेवलप्ड नेशंस में स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज है, मैनेज कैसे करें हम स्ट्रेस को, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बना रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। जो बाबा ने हमें यहाँ मेडिटेशन द्वारा हमें सिखा देते, जिसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं जाता है, वहां तो वो बिजनेस इंडस्ट्रीज बन गई है। एंड आपको पता होगा कि स्ट्रेस, हम डिजीज होता है तो भी ले लेते हैं। फिलहाल आप सभी को पता है कि यूथेनेशिया की कितनी डिबेट्स चल रही है, इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग की। तो हम देखते हैं कि कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने लीगलाइज कर दिया है कि ठीक है, इंसान को मृत्यु चाहिए तो वो अपनी लेटर्स में कंसेंट दे दे। और नीदरलैंड्स है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, यूएस स्टेट ऑफ ओरेगन है, इंडिया ने आज तक लीगलाइज नहीं किया। और हम वह बात कब सोचते हैं मरने की, चाहे हम बिल्कुल जीवन से थक गए हो मेंटली, जैसे कल हेल्थ की बात होती है, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल हेल्थ टू, एंड इट्स सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, इट्स इंक्लूसिव ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल। स्पिरिचुअली हमारी हेल्थ हम कितनी स्ट्रांग रखते हैं, जिसका रिपरकेशन फिजिकल, मेंटल और सोशल रिलेशनशिप पे भी आएगा। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश में एक औरत ने जो कि लास्ट स्टेज में थी, उन्होंने हॉस्पिटल में से डायरेक्टली कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, और वो केस वो जीत गई और उसको इच्छा मृत्यु दी गई। वेल्बी नाम का एक मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी पेशेंट था। आपको पता है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी एक ऐसा रोग है, पूरे बॉडी को इतना पेन देता है और उसके मसल्स और बोन्स बिल्कुल वो हिला नहीं पाते हैं। उसने इटाली में अर्जी कोर्ट में डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट में की थी कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, हालांकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड डिबेट्स है, भारत देश में अरुणा शानबाग के केस से लेकर हम कई सारे ऐसे केसेस आप सभी पढ़ चुके हैं जिसमें कोर्ट ने कहा कि एक्टिव यूथेनेशिया इज नो वे, बिकॉज वी एज जजेस वी अपहोल्ड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, एंड दैट डज नॉट मीन एंड इंक्लूड राइट टू टेक अवे लाइफ ऑफ अ पर्सन। इट्स गिवन बाय गॉड, इट्स ओनली गॉड हु विल हैव अ राइट टू टेक अवे लाइफ ऑफ अ पर्सन। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं कुछ हालात में, हालांकि डॉक्टर सर्टिफाई करे, रिलेटिव्स कंसेंट दे, एंड पैसिव यूथेनेशिया इज रिमूवल ऑफ वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जब रिमूव करना हो तो यू नो दैट कैन बी डन। हम देखते हैं आज ऑर्गन डोनेशंस की बात आती है, बॉम्बे हॉस्पिटल में जो सबसे बड़े नामांकित नेफ्रोलॉजिस्ट है उनकी गिरफ्तारी हुई थी ऑर्गन ट्रेड बाजार में, किडनी की जो इंटरनेशनली ट्रेड बाजार। तो ये हमारे मॉरल्स कहाँ गए, हमारे एथिक्स कहाँ गए, हमारे पुण्य कहाँ गए, जब एज डॉक्टर्स या एज लॉयर हम किसी को बचाने की बात करते हैं तो ये मॉरल वैल्यूज एथिक्स सब कहाँ गए, ये सोचने की बात है। तो मार्क ट्वेन ने कहा है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सच, उन्होंने कहा है कि वी आर इट्स द बाय द गुडनेस ऑफ गॉड दैट वी हैव दिस थ्री अनस्पीकेबल राइट्स एंड टर्म्स, दैट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द प्रूडेंस नेवर टू फॉलो ईदर ऑफ देम। रिलीजियन हमें कुछ अच्छा ही सिखाता है, हमारा मॉरल कॉन्शियस हमें जब गलत करते हैं तो भले हम गलत करते हो लेकिन कॉन्शियस तो कहता ही है कि आपने गलत किया है। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड दी प्रूडेंस नेवर टू प्रैक्टिस ईदर ऑफ देम, ये कई साल पहले मार्क ट्वेन ने कहा था। तो हमारे वैल्यूज जिसको हम कई कैटेगरीज में मॉरल, सोशल, बिहेवियरल, पर्सनल वैल्यूज ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते, शायद कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते जाते हैं। जब स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस की बात आती है तो ये स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हमारे मॉरल्स को हमें बढ़ावा देना है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है। हमारी काफी सारे बहनें, आप रेगुलरली जो सुबह की क्लासेस में आते, कविता बहन जी भी यहाँ बैठे हैं, उनके पास इतने अच्छे अच्छे विचार है कि दिन में इफ यू काउंट एज अ रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी एंटरटेन थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स, एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ दोज थॉट्स, वो पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते, वेस्ट थॉट होते। आप कई दिनों से, दो दिन से, ढाई दिन से तो ये सुनते ही आते रहे, तो क्यों ना हम सुबह उठ के सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट ग्रहण करें। कल सूरज भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ईगो और क्रोध, अगर ये दो हमारे नाशक है तो इस पर से एक पॉजिटिव थॉट, चाहे 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर एक घंटा, फिर एक दिन, फिर एक महीना, क्यों ना हम प्रैक्टिस करें कि हम क्रोध ना करें, हम अपना ईगो ना दिखाएं, मैं ये हूँ। तो प्रैक्टिस तो कर सकते, बिकॉज आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 30,000 थॉट्स जो एक इंसान के मन में एक दिन में 24 घंटे में अगर आते हैं तो उसमें से 29,999 थॉट्स आर जस्ट नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स, और एक पॉजिटिव थॉट, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम बढ़ाते जाएंगे तो ये अपने आप ही घटते जाएंगे। So it's the negative and waste thoughts which are in majority and ruling over one positive thought. तो ये एक spiritual prudence है कि हम दिन में एक positive thought ग्रहण करें. लेकिन हमसे यह नहीं छूटता, इट्स द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. हम जो देखते हैं हमको वैसा बनना है, हम जो बाकी लोगों को देखते हैं हम वैसे कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, हम नाम शोहरत ये सब कमाना चाहते हैं. तो ऐसी ही एक घटना हुई थी कि एक गांव था बिल्कुल छोटा सा, और गांव में गांव वालों ने सुना था कि गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है और वो पेड़ के नीचे वो साधु कहीं दिन से बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, और वो साधु का नाम बहुत ही फेमस था कि वो सभी को बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं. तो ये सारे गांव वाले उसके पास गए और उन्होंने वो साधु से कहा कि आप हमारे गांव में आइए और हमें ज्ञान की कुछ मोती हमसे बांटे, आप हमें कुछ ज्ञान दे. तो साधु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा. तो उन्होंने पूछा क्या, तो साधु ने कहा एक प्रश्न यह है कि डू यू बिलीव इन गॉड, आप भगवान में विश्वास करते हो? तो गांव वालों ने कहा बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करते होते तो आपके पास हम आते ही नहीं. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भगवान में विश्वास करते हो तो फिर मुझे ज्ञान देने के लायक कुछ है ही नहीं, आप जा सकते हो. तो वो बिल्कुल बेचारे मुरझाए हुए छोटा मुंह लेके वापस चले गए. उन्होंने सोचा ये कैसा साधु है. तो उन्होंने दूसरे दिन वापस उनके पास जाने का सोचा और उनके पास गए और उनसे कहा कि प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे गांव में आकर हमें कुछ ज्ञान दीजिए. तो साधु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, बट आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, डू यू बिलीव इन गॉड? तो गांव वालों ने कहा नो वी डोंट बिलीव इन गॉड. तो साधु ने कहा फिर मुझे कहने के लायक कुछ बचा ही नहीं है, आप लोग जा सकते हो, तो और कुछ देने का है ही नहीं मेरे पास. तो वो विलेजर्स वापस चले गए. उनके मन में ये सोच आई कि ये कैसे साधु है, हम कहते हैं हाँ हम विश्वास करते तो भी नहीं आए, हम कहते नहीं करते तो भी नहीं आए. तो उन्होंने सोचा एक लास्ट बार हम प्रयत्न करके देखते, क्योंकि हमने उनका नाम काफी सुना है. और वो तीसरे दिन वापस साधु के पास आए. उन्होंने कहा कि प्लीज हमारे पूरे गांव की तरफ से हम ये प्रार्थना करते कि आप कुछ ज्ञान हमें सुनाए. तो साधु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, डू यू बिलीव इन गॉड? तो विलेजर्स ने कहा कि वी डोंट नो दी आंसर, इसका जवाब हमारे पास नहीं है. तो साधु ने कहा कि मैं आज आऊंगा और आपको यह ज्ञान. वो गए और उन्होंने कहा वी डू बिलीव इन गॉड बट वी बिलीव इन बिलीविंग इन गॉड. हम देखते हैं कि what is it that you believe in believing in God. हम भगवान पे विश्वास तो करते हैं, बट हमारी ज्यादा आस्था टू बिलीव इन बिलीविंग इन गॉड है. तिरुपति जाके बाल निकाल देना, भगवान के पास दिए रखना, रोज भीख मांगना, आज ये कर दो, आज वो कर दो, आज ये कर दो, आज मेरा काम सफल कर दो, ये तो हम ये कर लेंगे, हम 1,000 हम 1,00,000 का डोनेशन देंगे हम. सो वी बिलीव, इसका मतलब हम भगवान के साथ भी कितनी मतलब की बातें करते हैं. सो यू बिलीव इन बिलीविंग इन गॉड फॉर योर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट एज सच. तो विलेजर्स को तब पता चला कि हाँ हमारी आज तक की जो आस्था चाहे धर्म से, इसलिए आपको कई दो दिन से कहा जाता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी. रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बैक्ड बाय एनी रिलीजियन. वो अपने आप में एक ऐसा मॉरल है, एक ऐसी वैल्यू है जो हम ग्रहण कर सकते हैं. तो ये खुशी, मेरे पास 3 मिनट ही है लेकिन मैं 5 मिनट लूंगी, क्योंकि मेरा सेशन 5 मिनट लेट चालू हुआ था, और आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूंगी. और वी ऑफन take this into a ride and we think that with God also हमारा सौदा होता रहता है, तो बाबा हमें रोज आपसे मेरी यह विनंती है, मैं खुद भी अपने बंबई के व्यस्त समय से रोज सुबह की मुरली सुनती हूँ, एक थॉट दिन भर तक, रात तक जब सोते हैं तब तक रहती हूँ जो हमने मुरली से उस दिन की ग्रहण की हो, आई थिंक दैट इज सफिशियंट इन इटसेल्फ। मैं कोई परफेक्ट आपके सामने बैठी हूँ और प्रवचन दे रही हूँ, सो आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बींग एट ऑल, मेरे में भी आप जैसी बहुत सारी खामियां हैं जो मैं धीरे धीरे एलिमिनेट करने की कोशिश तो कर रही हूँ, धीरे धीरे जब बाबा अपलिफ्ट कर देंगे तब अपने आप हो जाएगी। सो वी नीड टू हैव टेक इन एटलीस्ट वन पॉजिटिविटी थ्रू दी मुरली क्लासेस। बाबा हमें सिखाते हैं क्रूसीफाई योर फिजिकल सेल्फ, उसको क्रूसीफाई कर देना है। एंड एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, हम जिम्नेशियम की बहुत बात करते हैं, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने एक इंसान से पूछा डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, तो वो इंसान जो था वो एक अच्छा सा स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन था, उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करता हूँ। तो उन्होंने कहा आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मीन्स काबू में रखना, आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट ओवर द पांच विकार जो बाबा हमें रोज सिखाते हैं। हमारे सबसे बड़े मुख्य पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस पर मैं रिस्ट्रेंट लगाने की एक्सरसाइज रोज करता हूँ। और ये जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिम्नेशियम में, और यू नो इट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ, लेकिन हमारी मानसिक सोल के लिए न्यूट्रिशन, सोल के लिए जो एक्सरसाइज की आवश्यकता है वह भी उतनी ही जरूरी है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दैट्स इंक्लूसिव ऑफ मेंटल हेल्थ टू। एंड यह हमें याद रखना है, हाउएवर द प्रेजुडाइजेस एंड कॉम्प्लेक्सेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सोशल एनवायरमेंट, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इट हिंडर्स द सोशल एटमोस्फियर, इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, तो इसमें कमी होती जाती है। एक लास्ट दो उदाहरण दे दूंगी फिर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। स्पिरिचुअल प्रूडेंस जब हम ग्रहण करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हमारी हर एक समस्या का सॉल्यूशन हमारे पास ही है। कन्फ्यूशियस नाम के एक बहुत ही विद्वान टीचर थे और वो इतने विद्वान थे, ही वॉज नोन फॉर हिज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, और हर साल वो बच्चों को लास्ट डे जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी वो इकट्ठा करते थे और उनसे कहते थे कि माय डियर स्टूडेंट्स आज लास्ट डे है, आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक बच्चा जो था बहुत शैतान था, सोचता था कि पूरी इतने दिनों से इतने सालों से ये हम पर हक जमा रहे थे एज अ टीचर, आज तो मैं उनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। उस बच्चे ने कहा सर मेरे मुझे एक डाउट आपसे पूछना है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा यस माय चाइल्ड क्या पूछना है आपको। उन्होंने कहा सर एक मिनट रुक जाइए। वह बाहर गया, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला था, उसके छोटा सा बच्चा था जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, उड़ नहीं रहा था, अभी उड़ने की तैयारी ही थी, वो उसने अपने हाथ में लाया और अपना दूसरा हाथ उस पर ढक दिया। क्लास में आया और उसने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वह जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है। उसने सोचा था जैसे ही सर कहेंगे कि जीवित है तो मैं दो हाथ से उसको प्रेस कर दूंगा तो वो मर जाएगा, तो वो झूठे हो जाएंगे, सर को झूठा ठहरा दूंगा। और जैसे ही कहा कि नहीं वो उसकी मृत्यु हो गई है तो मैं दोनों हाथ खोल दूंगा तो वो उड़ जाएगा, तो दोनों केसेस में मेरे टीचर जो हम पर बहुत ही रोफ जमा रहे थे इतने दिनों से एज ए टीचर बन के, तो उनकी हार निश्चित है, तो मैंने अपना गोल पा लिया। तो कन्फ्यूशियस तो बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने उसकी आंख में आंख डालकर देखा और वो उसकी शैतानी समझ गए और उसने कहा माय डियर चाइल्ड आई हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन, तुम्हारे प्रश्न का आंसर मेरे पास है। वो कहने लगे कि द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो निवारण सॉल्यूशन है वो आपके खुद के हाथों में है, यानी कि इट्स इन योर ओन हैंड्स। तो हमारी सोच से इट परकोलेट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। तो उसने क्या सोचा था वो बच्चे ने, वो जान गए और उसने कहा कि दिस अप्लाइज टू एवरी वन, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आर प्रॉब्लम एंड वी आर द वंस हु हैव सॉल्यूशंस टू आर प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स बनती है हमारी सोच से। सो व्हाट इज इट यू पोर बाय वे ऑफ मेडिसिन इन योर सोल, दैट कम्स आउट बाय वे ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे गौतम बुद्ध ने, उसका एक शब्द मुझे बहुत ही याद है, जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है तो हम शांत मन से बैठे तो वो सॉल्यूशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये एक गुण धारण करने की जो है वो हमारी एक सोच होनी चाहिए, एंड दैट इज स्पिरिचुअल ज्यूरिसप्रूडेंस एज सच। और एक उदाहरण सत्य घटना हुई थी, नेल्सन मंडेला थे। देखिए आप, बड़े बड़े जो एब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और कितने साल जेल में रहे थे और बाद में फिर वो प्रेसिडेंट भी बन गए साउथ अफ्रीका के। जेल में उनको रखा जाने, जब वो प्रेसिडेंट थे तो एक दिन सडनली उनको लगा कि क्यों ना आज मैं मेरे सेक्रेटेरिएट स्टाफ को लेकर बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में लंच लेने जाऊं। और वो गए उनके साथ और लंच के लिए एक होटल में सभी बैठ गए खाना खाने के लिए। तो नेल्सन मंडेला की नजर एक बूढ़े से इंसान को कॉर्नर पे जो बैठा था उस पर पड़ी। उसने अपने सेक्रेटरी से तुरंत कहा कि उस वो बेचारा अकेला बैठा है, शायद गरीब दिख रहा है, उसको भी ले आओ और कहो कि हमारे साथ लंच ले, मेरे बगल वाली कुर्सी खाली है उस पर उसको बिठा दो, हम साथ में लंच लेंगे। तो वो लाए उसको, वो इंसान बैठा, उसने नेल्सन मंडेला के सामने बिल्कुल देखा नहीं। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा वो कांपने लगा, बहुत एकदम घबराया हुआ और एकदम कांपने लगा। फिर भी नेल्सन मंडेला ने उनसे कहा कि आप खाना मंगाइए। उसका सभी का खाना आया, सभी ने खा लिया। उस इंसान ने जैसे ही अपना पेट भर के खाना खा लिया, उसने न थैंक यू कहा न कुछ कहा, वो बिल्कुल खाना खा के वहां से घबराते हुए, एकदम थर थर कांपते हुए वहां से चला गया। तो सेक्रेटरी ने मंडेला से कहा कि सर ये आपने क्या किया, वो शायद कुछ दिमागी तौर से ठीक नहीं लग रहा है, और देखिए उसने बिल्कुल तमीज तक नहीं है कि आपने उनको बुलाया, अपनी बगल में बिठाया, खाना खिलाया, ना उसने एक्नॉलेज किया ना उसने कुछ, कैसा इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है, या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर उसको कुछ हुआ है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा मैं आपको उसका सही कारण बताता हूं कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था। उसने कहा कई साल पहले मैं जब जेल में था, कई सालों तक जब मैं जेल में था, वह जेल का कांस्टेबल था जिसको मेरे जेल की देखरेख करनी थी, मुझे ले जाया जाता था एक डार्क रूम में, बहुत ही मुझे पीटा जाता था और इतना सारी जगह से मुझे खून निकलता था, और जब मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता था तो मुझे वापस मेरे जेल के जो बैरक है उसमें रख दिया जाता था। तो एक बार बहुत मार खाने के बाद जब मुझे लाया गया तो उसी कांस्टेबल से मैंने पूछा कि मुझे पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। तो ही यूरिनेटेड ऑन माई माउथ, और वह वही इंसान है जो आज एकदम बूढ़ा हो गया है, वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहा था, वही कांस्टेबल था जिसने मेरे पर इतने सारे अत्याचार किए थे कि उसने मुझे पानी तक नहीं पिया, और उसने मेरे मुंह पर जब मुझे बहुत प्यास लगी थी तो उसने पेशाब किया, वही यूरिनेटेड ऑन हिज माउथ, और आज वो नजर नहीं मिला पा रहा है। तो सेक्रेटरी ने कहा वो उसने कि आपने फिर क्यों उनको इतनी सपोर्ट किया। उसने कहा कि वह सोचने लगा था कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा जो उसने मेरे साथ कई साल पहले किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हूँ, मेरे लिए सारे एक जैसे है। अगर मैं भी उसकी तरह वैसा ही व्यवहार करता तो शायद मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। सो दिस इज स्पिरिचुअल जूरिसप्रूडेंस या प्रूडेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज सच। और अंत में दो शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, जो उन्होंने तीन सेंटेंस में कहा, कि नो पर्सन कैन बी कम्प्लीटली फ्री टिल ऑल आर फ्री, नो पर्सन कैन बी कम्प्लीटली मॉरल टिल ऑल आर मॉरल, एंड नो पर्सन कैन बी कम्प्लीटली हैप्पी टिल ऑल आर हैप्पी। और थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन में एक बहुत ही अच्छे शब्द तीन वाक्य में कहा था। कभी भी आप थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन पढ़ोगे तो ये तीन सेंटेंसेस पाओगे। उसने कहा है कि हमारी सोच हमें सिर्फ अपने नेशनल टेरिटोरियल बॉर्डर्स तक नहीं रखनी है। थिंक दैट द होल यूनिवर्स द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड, चाहे मेल हो फीमेल हो भिखारी हो जो भी हो, ऑल मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड टू डू गुड टू अदर्स इज माई रिलीजियन। दिस इज ट्रू स्पिरिचुअल जूरिसप्रूडेंस अकॉर्डिंग टू मी। मेरी समझ में स्पिरिचुअल जूरिसप्रूडेंस की जो बात आई वो मैंने अपने टाइम लिमिटेशंस में आपके सामने रख दी। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रश्मि दीदी का। बहुत सहज शब्दों में आपने समझाया स्पिरिचुअल प्रूडेंस। हमें बेहद की सोच रखनी है। दीदी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि हम अनेक लोगों से समय प्रति समय मिलते हैं और उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट हु एम आई। दैट इज द रियल प्रूडेंस, स्पिरिचुअल प्रूडेंस एक्चुअली। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति।